nam itu beda. Jadi tengah nam एकांतिक भाव से और प्रेम नमित चित्त से श्रीमती राधिका जी की उपासना करते हैं। मैं उनके चरण जुगलों को धोकर और उस पवित्र जल को मस्तक में धारण करूंगा, उससे पान करता हूं, यदि उनका के बाद परित्यक्त प्रयोजन समुदय बाहि अशुद्धि दुरंधो निरंधम कदल बर्वाधो निपति पीड़न दंत दस्व चतुर्थी अभिजात कृपया स्वयं गंधर्वा शपथम विनाशम नये कुमार। इसके पहले कल या परसों मैंने कहा था जीव तत्व के संबंध में, जब भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान, तो उनके अंत को स्वांश करते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, इनमें से केवल चित्त शक्ति से संपन्न भगवान होते हैं और को आच्छादित करके रखते हैं, तो उसका आंशिक जो विकृत प्रतिफलन होता है उसको चिन्मात्र ब्रह्म कहते हैं। और जब भगवान अपनी सारी शक्तियों को आच्छादित कर केवल मात्र तथा शक्ति से युक्त होकर जब रहते हैं, तब उनका जो अंश होता है वो भी विनाश कहलाता है। वही जीव तत्व, किसने क्या समझा नहीं समझा, हम तो बहुत देर से समझाया, तो बतलाओ तो मतलब क्या समझा। जीव तत्व के संबंध में बोल रहा
और आनंद आंशिक रूप से पूरा परिवर्तन को आच्छादित होता है, तो आंशिक
इसलिए भगवान पर ही नहीं, किंतु अपनी जो वो शक्तियां हैं सभी शक्ति आनंद सर्वशक्तिमत्ता और आनंदमयता सर्वज्ञता ये सब को अच्छा देखा भगवान रहेंगे और अपनी तटस्था शक्ति को परिपूर्ण रूप में रखते हैं अपने साथ में, उस समय उनका जो अंश होता है उसको इसको विधि न, इसमें शक्ति तटस्था शक्ति की क्रिया अधिक रहती है। भगवान का तो थोड़ा थोड़ा रहेगा ही, भगवान में ज्ञान है, आनंद है और सत्ता है, ये तो जीव रहेगी आंशिक रूप में, किंतु तटस्थता होने के कारण शक्ति का परिणाम उसको कहा जाता है, वस्तु का परिणाम नहीं होगा। स्वांत जो है वो वस्तु का परिणाम है, वस्तु के द्वारा, और जीव तत्व तटस्था शक्ति की परिणति है, किंतु भगवान उसमें रहते हैं। भगवान जीव तटस्था शक्ति का अंश ये जीव गोस्वामी का विशेष विचार।
भगवान
रहता है किंतु अपने को जैसे अब जैसे देखो हमने दृष्टि शक्ति दी है, हमने प्यार भी है, हमारे अंदर में क्रोध भी है और भी बहुत सी चीजें हैं, किंतु जब क्रोध होता है तो अपने आनंद को, प्रसन्नता को और सबको हम दबा देते हैं, बल्कि क्रोध ही दबा देता है और उसमें भयंकर क्रोध आ जाता है, केवल क्रोध वहां पर पता चलता है। इसलिए केवल क्रोध से यदि कोई हमारा विचार करेगी महाराज जी बड़े क्रोधी हैं तो ये गलत हुआ है, क्योंकि उसने और चीजें तो अनुभव की नहीं, केवल क्रोध देखा, और जब स्नेह देखेगा ऐसा होगा, जब उनकी हंसी देखेगा, जब उनकी रसिकता देखेगा, उनका और सब गुण देखेगा, तो इसी प्रकार से भगवान में जो तटस्था शक्तियुक्त भगवान जो सत्यगान उनका जो अंश होता है वो विभिन्न कहलाता है, और चूंकि शक्ति की वहां पर प्रधानता रहती है इसलिए शक्ति का परिणाम जीव का, शक्ति का परिणाम वस्तु का परिणाम जीव। अब इतना ही समझो तो बहुत, फिर धीरे धीरे भजन करते 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 तटस्था शक्ति से जीव सन्नत हुआ, इसलिए इसको विभिन्न माने शक्ति के, शक्ति कुछ भिन्न है भगवान, अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। जैसे आग है, आग और आग की शक्ति अलग भी है और भिन्न भी है, कैसे अलग है, आग यहां पर जलाओ यहां पर जल गई आग, उसकी जो दाहिका शक्ति है वो वहां तक जा रही है, यदि अलग नहीं होती दाहिका शक्ति आग से तो उसकी दाहिका शक्ति वहां पर जाकर के ताप दे रही है, ये कैसे होगा। फूल और फूल का गंध सुगंध वो अलग अलग है और एक भी है, फूल नहीं रहेगा तो सुगंध नहीं रहेगी, किंतु फूल वहां से वहां नहीं जाता है, उसकी सुगंध वहां तक चली जाती है, इसलिए कुछ अलग भी है, इसीलिए इसको अचिंत कहा जाता है, इसकी चिंता नहीं की जाती, अचिंत की। निंदाचार्य ने जीव को मन स्वाभाविक भेदाभेद माना, हम लोगों ने माना अचिंत भेद, स्वाभाविक आने से वो शक्ति शक्तिमान का परिणाम हो जाता है, शक्तिमान का परिणाम वस्तु का परिणाम स्वाभाविक आने से, और शक्ति का परिणाम खाने से जीव परिणत हुई है। भगवान जैसे कैसे हैं उनसे नहीं किंतु उनसे संबंधित है, भगवान से निकला किंतु भगवान की तटस्थित शक्ति परिणत होकर के भगवान की इच्छा से ऐसा सब महाप्रभु को छोड़कर के सब शंकराचार्य ने खंडन किया, शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुछ सही हुआ ही नहीं, जीव है ही एकदम है ही नहीं, उन्होंने कहा कि जीव ही सत्य है, जगत भी सत्य है, मतलब क्या हम लोग जितने भी समाचार है। शंकराचार्य ने कहा कि जीव और जगत है ही नहीं है, ये ब्रह्म में ऐसा भास है, ऐसा भास है, जीव है ही नहीं है, जगत है, ये सब बहुत तो है ही नहीं है, नेह नाना कुछ है ही नहीं है, तो कहे से ये जो देख रहा है कि बहुत से ये देख रहा है, शंकराचार्य जी ने कहा कि इसे एक भूत देख रहा है, स्वप्न मत देख रहा है। तो वैष्णव ने जीव गोस्वामी ने उनसे पूछा स्वप्न कौन देख रहा है, स्वप्न देखता कौन है। तब शंकराचार्य जी बगल झांकने लगे, तब कोई युक्ति बनाना पड़ा। तो यदि कहते हैं ये जीव है तो जीव वस्तु हो गया, तब सब गड़बड़ हो गया, ये तो जीव तो कहीं नहीं। तो उन्होंने कहा जैसे ये ब्रह्म ही देखता है, तब ब्रह्म तो अपने से अलग कोई चीज होगी तब तो देखेगा, अपना तो कैसे देखेगा। इसलिए बैठो ने कहा कि ये जो देखने वाला है देखता है ये बहु, ये इतना बहुत देखा है, तो वो ब्रह्म को भी अज्ञान है ये इतना दिखता है उसको, उसको तो केवल अपने को देखना चाहिए। और देख करके कहता है किसको, जब दूसरा वस्तु आई नहीं है तो कहा किसको सुनाता है किसको। इसी तर्कों पर युक्तियों पर शंकराचार्य के विचार को अजय शंकर जी ठीक है भगवत भक्त, उन्होंने भगवान को भगवान ने उनको आदेश दिया इन नास्तिकों से हमें बचाओ, बौद्ध इत्यादि। इसलिए शंकर जी उन लोगों को भगवान से दूर रखने के लिए, और जगत की सृष्टि उत्तरोत्तर होती रहे ना तो तभी तो मुक्त होगी, इसलिए शंकराचार्य के रूप में युक्त होकर कल्पित माया शास्त्र और कल्पित मायावाद को वैष्णव में इतना भेज दिया ना, तो शंकर को झूठ मान लिया। किंतु रामानुज विष्णु स्वामी निम्बार्क जी और ये सब जितने हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर तो इनमें मत भेजते हैं, उसको एक होना चाहिए। कहते हैं इन लोगों में भेद नहीं है, एक ही की बात होगा। केवल बद्ध जी के लिए सहज रूप में कैसे उस चीज को पाए धीरे धीरे समझ कर करके, इसलिए अपने उनके तारतम्य से उन्होंने ऐसी बातें को वैशिष्ट से दर्शन कर लोगों में प्रश्न थे, उन्होंने ये कह दिया कि वही उपास्य है जीव उसका उपास्य और जो करता है उपास्य, ये तीनों चीजें लिखते हैं। इसलिए उनमें परस्पर ये दार्शनिक तत्व की भी आलोचना होनी चाहिए। पहले बहुत दिनों तक यही सब हुआ था, पहले हमने जब
धारणा
हमने आ गए तो इधर तो होता नहीं है, पहले हमने दर्शन शास्त्र से ये लेकर के ये सब पहले बहुत दिन आ गए। किंतु आप लोगों को जानना चाहिए, ये सब नहीं जानेंगे तो भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी उसमें, ये सब जो कहा जा रहा है ये सब प्रतिष्ठा ही नहीं, ये जो चल रहा है ये पहले उसमें पहले लिखा हो उसको थोड़ा बहुत ध्यान लेना चाहिए। इसे दर्शन शास्त्र के ग्रंथ चैतन्य चैतामृत दर्शन शास्त्र है, साथ साथ में रस भी ग्रंथ है, सब कुछ है, उसको पढ़ो, जैव धर्म पढ़ो, वेदांत दर्शन कुछ कुछ पढ़ा जाए।
मुझे तो जहाँ भागवत थोड़ा बैठने
वही वैष्णव के अनुभव नहीं ऐसे, वो तो दिन भर गोदी में लेकर के और अपने संशय लगाए नहीं रहेगा कि पीते रहो जीवन भर, ऐसे उसको कहेगा कि ये देखो पूछो अपना कुछ चेष्टा के लिए, अपनी चेष्टा भी होगा अपनी चेष्टा ही नहीं रहे सब कुछ ऐसा। रामानुज क्या कहते हैं मध्वाचार्य का विचार क्या है, चैतन्य महाप्रभु की उन सब लोगों से विशेषता क्यों है, ये सबको विचार करके देखना। और नहीं तो केवल यही सब जो बातें जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना तो कोई ना कोई वो पूछ देगा और तुम लोग कैसे होगा, कोई उत्तर ही नहीं देगा, समझ ही नहीं सकते। सभी लोगों में और हम लोगों में यही अंतर, वो केवल वही चोर देखते हैं और इधर छोड़ देते हैं, इसमें भक्त नीचे के पड़ते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ये बताया है प्रत्यक्ष प्रयोजन समुदाय बाह्य असुख सपना दास को स्वामी जी बतला रहे हैं, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और बहुत दुर्भागा हूं, दुर्बुद्धि स्वरूप और शिलरूप सनातन इत्यादि उन लोगों ने हमको छोड़ दिया, परित्यक्त छोड़ करके हमें साधारण अवस्था है। हिताहित ज्ञान सुनिए, हिताहित का ज्ञान नहीं है, किसमें हित और किसमें अहित होता है। मुझको मर जाना चाहिए कि जीवित रहना चाहिए, अब मुझको कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। उनके प्रकट में भी अब तक जीवन धारण किए नहीं, और महादुख सागर में निमज्जित हो रहा हूं। अब इसलिए दांतों में तीन धारण करके तीनम दंतई दृष्टा, दांतों में तीन रख करके अत्यंत कातर होकर के चतुरी मैंने कातर होकर के मैं श्रीमती राधिका जी के गंधर्वा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। अन्न के इस जगत में रहा नहीं जाता, स्वपद नलिनांकम अपने चरण कमल के अंत में अर्थात निकट में मैं तुम्हान मुझे अपने चरणों के समीप दिए। क्यों चरणों के समीप ले लें? स्वरूप दामोदर जी वहां पर होंगे, किसी रूप में रूप गोस्वामी भी किसी न किसी रूप में
सबने
के लीला में पहुंचे हैं, तो वहां पर सब उनकी लीला में सेवा में इसलिए जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने चरण प्रांतों में हमें बुलाने के लिए। किसी के लिए विरह होता है, किसी को तो विरह होता है, जिससे चाहे लौकिक रूप में चाहे पारलौकिक रूप में यदि उसकी अज्ञानुभूति होती है कि हम मैं इससे बहुत उपकृत हूं, अब ऐसा मेरा उपकार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा, तो उसके लिए विरह होता है। प्रियता के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है, प्रियता की उपलब्धि होनी चाहिए, ये हमारा सबसे प्रिय। संसार वाले अधिकांश रूप में लौकिक भोग के ऊपर में प्रीति रुचि निर्भर करती है, जिससे अधिक भोगों की वस्तुएं मिलती हैं हमको सुख होता है, ऐसे लोगों के प्रति माता को पुत्र से या माता पिता का पुत्र से पुत्र का माता पिता के प्रति स्नेह होता है, स्त्री का पति के पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, इस जगत में मित्र का मित्र के प्रति, किसी स्वामी के प्रति किसी सेवक का भी होता है। एक कोई सेवक जीवन के प्रथम काल में बच्चेपन से ही अपने मालिक के यहां नौकरी करता है और मालिक उसको अपने समान ही जानता है, उसकी शादी विवाह घर बार कराना सब समय उसका उस सब कुछ देकर के और उसको करता है, तो उसके लिए यदि मालिक चला जाएगा ना तो उसके लिए बड़ा सुंदर होगा। माता अपने पुत्र के विरह में, पुत्र अपनी माता पिता के विरह में, यह सब होता है। क्योंकि बहुत से लड़के आजकल तो या पहले भी देखा जाता है अपने पिता के माता को मार देते हैं, माता पिता अपने पुत्र को भी मार डालते हैं, और उनके इत्यादि का उदाहरण यह सब का होता है, ऐसा भी देखा जाता है। जिससे प्रीति होती है भोगों के आदान प्रदान से, ये लौकिक स्थिति के ऊपर में विराज नहीं करता। एक स्त्री अपने पति के लिए इतना क्यों पति से मर जाने के बाद क्यों? इसलिए तो उनके सामने में बड़े सुख से आराम से निर्भय होकर के वो रहती थी, जैसा चाहती थी, वो घर की मालिक नहीं रहती है, सब लोग उसका आदर करते हैं। और पति चले जाने के बाद में अब लड़के हैं वही, अब उनकी स्त्रियां धीरे धीरे मालिक होने लगती, उस समय अब उनकी धीरे धीरे धीरे, कब तक वो पुत्र लोग उनको आदर करते हैं, जब तक कि अभी उनके हाथों में कुछ है रुपये पैसे उनके पति का दिया, जो वो भी निकाल लेंगे बस, अब माता पिता को रख देंगे, माता को या पिता को, बस वो मालिकाना उनके स्त्रियों में आ जाए, वो उनका सुहाग हो जाए। इसलिए यहां पर ये जितना जो कुछ है पारमार्थिक सुख या दुख की तुलना में इस जगत का सुख और दुख दोनों ही नगण्य, परमात्मा इतना एक बहुमूल्य चीज है जिसकी हम लोग अभी कल्पना नहीं कर सकते। ये जिनको जितना अनुभूति हुई है वो लोग समझ, रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के, चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप दामोदर के, गुरु सनातन के कैसे प्रिय हैं और क्यों हैं अभी हम लोग नहीं समझे। उनकी अनुभूति थी इसलिए उनके लिए इतना विरह विराप कर रहे हैं।
कोरोना जब उपलब्धि है तब उनके विरह,
कोरोना की उपलब्धि नहीं होने से हमारे प्रति कितना करुणाशील थे, जो चीज नहीं देना था वो भी उन्होंने दे दिया। भक्ति से तो परम दुर्लभ और कोई चीज नहीं है, और भक्ति में भी उन्नत श्रेणी की जो भक्तियां हैं प्रेम और उसके संबंध में जो चीजें हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास को रघुनाथ का सबसे बड़ी कीमती चीज ही स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप, ये सबसे बड़ी उनकी चीज, ये महाप्रभु जी की असीम करुणा है। जो महाप्रभु स्वयं उस बच्चे को नहीं दे सकते थे उनके संग में दे सकते, ये सबसे बड़ी भारी पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रश्न किया स्वरूप दामोदर से, ये महाप्रभु जी से कह दें जो मैं थोड़ा सा साधन और साध्य के संबंध में जानना चाहता हूं। अपने महाप्रभु जी से नहीं कह सकते थे क्यों?
हाथ में सौंप दिया
नहीं, महाप्रभु के पति उनका गौरव भाव
थी, महाप्रभु मेरे छोटे छोटे मन को थे बालक बड़े बन गए
बालक भी, और महाप्रभु के पति उनका कुछ गौरव भाव था, जैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद ये सबका महाप्रभु के प्रति अत्यंत घनिष्ठ भाव था। महाप्रभु इन लोगों से तो बहुत ज्यादा दूर रहते थे, स्नेह किंतु है आपके तुम्हें यह बात ठीक है, किंतु इन लोगों का उनके प्रति गौरव भाव था।
हमारा गौरव बुद्धि राजा भजन का गौरव बुद्धि का महाप्रभु
अभी नित्य सिद्ध के अभी तो नहीं दिख रहा है ना, वो केवल साधन भजन का ही राजानुराज साधक भजन साधक कवि भजन के साधक कवि अपने को दिख रहा है। जब अपने सिद्ध स्वरूप से उनका चिंतन करते हैं तब वो दूसरी बात, वहां पर कोई मर्यादा और गौरव नहीं, तो महाप्रभु को प्रणाम क्यों करेंगे, प्रणाम करना क्या है। चैतन्य चैतान्य में स्वरूप दामोदर जी ने राय रामानंद को, उन लोगों ने महाप्रभु को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, ये प्रार्थना की। राय रामानंद का हो सकता है गोदावरी के तट पर, इसके बाद में नहीं अच्छा हुए, और स्वरूप दामोदर का जो महाप्रभु को प्रणाम किया उनकी बराबरी के रूप में उनको दे, क्योंकि रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट हैं, ये सब बहुत जूनियर हैं इस जगत में आने में और उसमें, इसलिए इनका उनके प्रति गौरव, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनसे कहा कि जरा जिसे कृपा करके ये पूछ दीजिए हमारे तरफ से, ये मुझको क्या करना चाहिए, साधन भजन मेरे लिए क्या है। तो एक दिन सभी बैठे रहे थे, तो इसी में स्वरूप स्वरूप दामोदर जी बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि ये बच्चा आपसे कुछ पूछना चाहता है, ये पूछता है हमारे माध्यम से आपसे, या आप अपने मुखारविंद से मेरे लिए क्या साधन और साध्य है, उसको क्या करना चाहिए, कुछ उपदेश। महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और डायरेक्ट उनसे कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी देखो जिनके हाथों में तुमको मैंने सौंप दिया है, ये लोग हमसे अच्छी तरह से साधन और साथ दिया, जो कुछ तुम पूछना चाहते हो हमसे अधिक
जानते।
अच्छा महाप्रभु जी झूठ बोले होंगे कि सच बोले होंगे? क्या जी उन प्रधान जी महाप्रभु जी ने ये कहा जैसे हमसे ये अधिक जानते, ये ठीक है कि गलत है? महाप्रभु जी ने कुछ वंचना तो किया ना उनका, अपने सब जानते हुए उनको कह दिया उनको। हाँ ऐसी बात नहीं, ऐसी बात सच में महाप्रभु जी ने तो कभी साधन किया ही नहीं। महाप्रभु कैसे साधन किया जाता है और कैसे उसको सहज रूप में कहेंगे महाप्रभु जी को ये सब चीज नहीं, वो तो रसिक रसिक शेखर है ना, वो सबसे अधिक और वो है विशेष जाति, बतला सकते हैं कुछ कुछ, क्योंकि जितना पुंखानुपुंख रूप में परिपूर्ण रूप में अनुभव के साथ में उनके लिए जितना कितना जरूरत है कैसा बतलाना चाहिए, ये स्वरूप दामोदर। और स्वरूप दामोदर से भी अधिक बतलाएंगे रूप गोस्वामी के पास में, इसलिए स्वरूप दामोदर इत्यादि ने कोई ग्रंथ उतना नहीं लिखा। वो लिखेंगे तो एकदम हाई स्टैंडर्ड से अपने भावना से ललिता विशाखा की दृष्टि से वो जो कुछ होगा वो लिखेंगे, इसलिए उनकी सेवा करने वाली ये जो रूपमंजरी रूपी जो रूप गोस्वामी है रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी इस विषय को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया और सबकी प्रेरणा करके उनके अंदर में इसको अभी ये बतलाने का जो ढंग है हम गुरु महाराज जी के मुख से सुना, ये प्रभुपाद जी की वक्तृताएं उच्च कोटि की दार्शनिक भाषा से होती थी, दार्शनिक भाषा में वैज्ञानिक उसमें शब्द रहते, इसलिए सब साधारण लोग उनको नहीं समझ पाते थे। इंग्लैंड का कोई प्रोफेसर दर्शन का वो भारतवर्ष में सब जगह घूम करके आया, बड़े बड़े विद्वानों से मिलकर तो एल्बर्ट हॉल कलकत्ते में प्रभुपाद जी का भाषण हो रहा था अंग्रेजी में, तो वो वहां पर गया सुनने के लिए, सब लोग सुन रहे थे। जब सभा समाप्त हो गई तो वो कह रहा कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हाँ वो अपनी सुंदर बहुत चमत्कार सुंदर हुआ। तो गुरु जी ने उससे पूछा कि तुमको क्या चीज अच्छी लगी ये तो बतलाओ, तो यही तो बात है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। आज तक हम जिन विद्वानों से मिला हमसे अधिक जानने वाले नहीं मिले, उनको विचारों को तो मैं समझ सकता था और उनसे बातचीत करता था, क्योंकि इनका इतना इन्होंने जो कुछ बतलाया हमारे समझ में कखग अभर एक भी नहीं कुछ भी, यही तो बड़ी बात है।
प्रभुपाद जी ने जो ब्रह्म संहिता टीका लिखा, लेकिन सवाल के समय जी आप तो कह रहे थे कि मैंने पहले मैं सोचा था मैं एक इंटेलिजेंट जायंट हूँ, दो बार बड़ा समझ में नहीं है, आप जब ब्रह्म संहिता पढ़ा थी उसको पढ़े थोड़ा सा समझ में आ रहा है।
वो तुम्हारे कृष्ण स्कूल का एक एक्सीलेंट बुद्धि का एक लड़का है, अब वहाँ का आचार्य है, तो ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी का अंग्रेजी है, अंग्रेजी उसकी व्याख्या की है, शब्द ऐसे ऐसे सब हैं समझना बड़ा भारी है, समझ में साधारण लोगों को
दो बार पढ़
तो हमारे पास में आए तो मैंने उसकी जब व्याख्या की तो वो मैं उनको दो चार बार पढ़ा हमारे समझ में कुछ आया नहीं, आप यहां तक के सर दुख में उसको समझ पाए। और तो प्रभुपाद जी को इसलिए कह रहा हूं इतनी उच्च स्टैंडर्ड की उनकी भाषा और उनके शब्द और उनके दार्शनिक विचार होते हैं साधारण लोग, तो अब प्रभुपाद जी की इच्छा होती थी कि भातु महाराज हैं, नहीं महाराज ये ऐसा वक्तृता करते हैं जो सब लोग हंसने लगते हैं। अब प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम भी उनको हंसा दें, कभी कभी रुला दें। तो प्रभुपाद जी जब भाषक वैसा करते तो वो हंसते नहीं, लोग हंसने की बात करने पर भी नहीं हंसते थे। क्यों? इतना गंभीर साधारण हम लोग भी उनके भावों को समझ नहीं पाते। इसलिए स्वरूप दामोदर से उनके हाथों में सौंप दिया ये महाराज, महाप्रभु जी जब समझाएंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनके हाथों में दे दिया। साधन शास्त्र सत्य जो कुछ भी है सब सहज विष्णु, और इसीलिए पीछे से उनको सुयोग दिया जो चीजें उनके समझ में नहीं आई वो रूप सनातन के निकट आकर के सत्य रूप। इसीलिए शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एक होंगे किंतु शिक्षा गुरु का भक्त इसीलिए कहा गया जो कुछ इनसे कुछ उनसे कुछ उनसे सबसे शिक्षा ले, तब वो शिक्षा कंप्लीट होगी। हमारे रामानुजाचार्य थे, वैसे तो बड़े धुरंधर विद्वान हैं, बहुत बड़े भारी विद्वान, और समस्त शास्त्रों को पढ़ लिख करके तब वो यमुनाचार्य से संन्यास लेना चाहते थे और उनसे खुद कुछ जानना चाहते थे। यमुनाचार्य पहले से ही इस चीज को जानते थे जो अंत में हमारे पास में आएगा और हमसे ही संन्यास लेगा, वो जानते थे। इसलिए अपने उसमें जब परलोक जाते हैं लोग तो वसीयत कर जाते हैं, वसीयत जानता है विल जिसको करते हैं, विल करके जाते हैं। तो उन्होंने विल कर दिया, वसीयत किया जो हमारे अप्रगत के बाद में रामानुजाचार्य जी तिरंगम का आचार्य होगा और उनके संप्रदाय में श्री संप्रदाय में वही आचार्य होंगे उनके जाने के बाद। तो रामानुजाचार्य समस्त शास्त्रों के विद्वान थे, अद्भुत उनकी मेधा थी। जब अपने गुरु जी के पास में उनसे संन्यास लेने जा रहे हैं तो उनका विमान आ रहा है, माने अप्रकट हो गए हैं। अप्रकट होने पर उनको कपड़े लेकर के रथ बना करके उनको पास में ताम्रपर्णी या कौन नदी है उसमें उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे थे। हजारों आदमी रोते हुए उनके पीछे आ रहे थे। पास जब ये जा रहे थे तो बीच में भेंट हो गई, क्या हुआ कौन है? अब यमुनाचार्य का वो अप्रकट हो गए, अब रोने लग गए। जो उनसे भेंट नहीं हुई, मैं उनसे डायरेक्ट रूप में उपदेश और ये सब लेना चाहता था, वो तो हुआ नहीं, रोने लगे और बोले जो अच्छा थोड़ा सा हमको दर्शन करा दो और उनके कपड़े को हटा दो। तो कपड़ा हटा दे दिया, उनको नीचे उतार करके उनको दर्शन कराया गया। तो उनकी ये तीन अंगुलियां, एक अंगुली ऐसे थी और तीन अंगुली ऐसे थी। बंदे खाली भाई ये तीस हाथ का तो वो सब ठीक है, ये इसमें क्यों ऐसा हो गया? लोगों से पूछा तो कोई नहीं बतला सकता। फिर उन्होंने चिंतन करके बोले जो मैं त्रिदंड संज्ञा मैं प्रतिज्ञा करता हूं उनके सामने, मैं त्रिदंड यहां पर बस एक अंगुली जो ऐसी थी वो ऐसे होती है। वेदांत का मैं श्री भास्कर लक्ष्मी जी के अनुसार में और हमारे पूर्व जो वैष्णव लोग हैं उनके अनुसार में करेंगे, क्योंकि मायावाद भास्कर चारों तरफ में प्रसिद्ध हो तो सिर्फ लोगों का सत्यानाश हो रहा है, इसलिए मैं इस जरूरी काम को जल्द करूं। तब साथ ही साथ एक और अंगुली खुल गई थी, अभी एक था। फिर उन्होंने कहा मैं सब शास्त्रों को प्रकाशित करूं जिससे कि वैष्णव धर्म का प्रचार है। बस उनकी बस वहीं पर उन्होंने त्रिदंड संन्यास लिया। अब सब लोग कहने लगे कि आप उनका अपकर संस्कार हुआ, किंतु फिर भगवान उनकी गद्दी पर आदमी भूत की गद्दी या राज सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में अंततः उसका नॉमिनेशन हो जाना चाहिए, साथ साथ संस्कार कुछ होना चाहिए, तो गद्दी तो खाली नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसी वसीयत है कि उनको उनके बाद में आचार्य कर दिया जाए, इसलिए आप आचार्य होना चाहते हैं, कभी ऐसे नहीं रहना। उनके 12-14 प्रधान प्रधान शिष्य थे, शहीद पूर्ण उनका नाम नहीं चल रहा था, किंतु नहीं दे रहा होगा संन्यास इत्यादि, उनके लिए बंद हो गया होगा, क्या हुआ ये तो नहीं, किंतु ऐसे वो एक एक शिष्य के पास में गए, चाहे गृहस्थ हो और धर्मचारी, जो ग्रंथ पूर्णतः विद्वान और सिद्धांत विद थे, जिनको सभी लोग मानते हैं, ऐसे सब लोगों के पास में गए और उनके घर पर उनकी सेवा करके उनसे सब उपदेशों को एक के बाद में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब कुछ, क्योंकि अलग अलग उनके शिष्यों के पास में अलग अलग तरह के उपदेश हैं, किसी को एक अच्छा लगा है, किसी को एक अच्छा लगा है उसमें प्रतिष्ठित है, इसलिए सबसे शिक्षा लेकर के जब उनकी शिक्षा परिपूर्ण हो गई और सब लोगों ने अनुमोदन किया कि नहीं ये उपयुक्त है, क्योंकि उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न कर दिया, यदि वो उसी समय बैठ जाते वो जैसे आजकल होता है, इसलिए सेवा के द्वारा संतुष्ट किया, उनका सिद्धांत सब जान लिया, वो लोग प्रसन्न होकर के कहा नहीं ये योग्य व्यक्ति, उनको भी परीक्षा करते थे, और इसके बाद में जब अनुमोदन करते किया तो 108 वर्ष की उम्र तक अत्यंत वृद्ध अत्यंत लंबी आयु थी उन्होंने ये सब, इसलिए श्री संप्रदाय का प्रचार दक्षिण भारत में उत्तर भारत में सफल, इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक होने पर भी शिक्षा गुरु हो सकता, तब हाँ उसमें भी देखा जाना चाहिए कि हमारे मन के अनुकूल हमारे ऊपर में कृपा करने वाले और मैं जिस विषय को चाहता हूं उस विषय में कौन वैसे अभिज्ञ, और दीक्षा गुरु के अनुकूल भी होना चाहिए,
दीक्षा गुरु अनुकूल
दोनों अनुकूल मैंने एक भाव मजार का होना चाहिए, तब वो ठीक रहता है, और नहीं तो मैंने इसको इसलिए कहा गया दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों एक ही कोटि के वैष्णव हों तब वो ऐसा संभव, नहीं तो विरोध रहेगा ही, इसलिए ऐसे दीक्षा गुरु वो कृष्ण के स्वरूप माने गए, दीक्षा गुरु के जाना कृष्ण का स्वरूप, आप शिक्षा
दीक्षा गुरु के जाना कृष्ण स्वरूप
वो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो विरोध होकर के पद सब चौपट हो जाएगा, विशेष करके लौकिकता के दृष्टि से ये सब नहीं कहा गया, इसीलिए कहते हैं स्वरूप नाम तो नहीं उनके क्या है, महाप्रभु के क्या है शिक्षा गुरु किसी शिक्षा और उनके रघुनाथ दास को का रघुनाथ दास का स्वामी क्या है, हमारे ये क्या है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट मुझे शिक्षा गुरु उनके शिक्षा गुरु, क्योंकि इनसे पहले आए, बल्कि जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को आदर करके अपना परस्पर बराबर समझते, इसलिए ये बता रहे हैं कि मेरी जो शिक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु चले गए, जैसे वो उनके इष्ट देव आराध्य देव हैं और वो भी साधारण आराध्य नहीं, वो कृष्ण हैं, किंतु राधा जी का भाव और अंग कांति लेकर के जगत ने अपना विशिष्ट प्रेम देने के लिए जो आज से एक कल्प पहले चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होकर के देने के लिए ऐसी वेश किमती थी उन्नत उन्नर्पित करें चिराग करुण्य आवत न करो समर्पित तुम उन्नतोज्ज्वल रसान, उन्नत उज्ज्वल रसान पर छेद मत देना नहीं तो गड़बड़ अर्थ हो जाए, उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए। इस चीज को समझना अच्छी तरह से, सबको नहीं समझेंगे क्योंकि जिनको है उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन करने के लिए। राधा जी के भाव को कहते हैं, गोपियों के भाव को
उन्नत उज्ज्वल,
ये कभी भी देवी की चीज नहीं है, ये तो महाभाव की स्थिति है, राधा या प्राय महिमा की स्थिति है। इसलिए ये देने की, इसको देने के लिए उन्नत उज्ज्वल नहीं आए, बल्कि उन्नत उज्ज्वल रसायन स्वभक्ति उसकी शोभा देने के लिए, लता को देने के लिए नहीं आए। लताओं में जो फूल खिले हुए हैं उन फूलों में से लेकर के दूसरों को दिया, और लता को उठा करके दे देगा तो क्या होगा, वो देने की चीज। इसलिए उसके फूल हैं, फल है, ये देने के लिए लता भी सुरक्षित रहे, पुनः खुले और फले और उसका वितरण भी कर दिया जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति उसकी शोभा देने के लिए। अतः ये रूप गोस्वामी का रघुनाथ गोस्वामी का जो भाव है यही देने के लिए, राधा जी का भाव देने के लिए नहीं बल्कि उनका स्मरण करने के लिए आए। तो उसी को कह रहे हैं, वो मेरा जैसा दुर्बुद्धि और ज्ञान शून्य व्यक्ति कोई नहीं, अब मुझे अनुभूति हो रही है। महाप्रभु जी रहते मैंने इसका विचार नहीं किया, स्वरूप दामोदर सर रहते मैंने ये सब विचार नहीं किया, उनसे ये सब पूछा, कुछ कुछ पूछा जा सकता है साधुओं और सनातन गोस्वामी से, वो लोग भी नहीं छोड़ करके चले। अब मैं क्या, अब मैं असहार पशु किसी चीज को यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। अब तो राधा जी के पिता के बिना और कोई व्यक्ति नहीं, हाँ तो वो रघुनाथ दास कृष्णदास कविराज गोस्वामी का राधामानंद डायलॉग में बतलाया है, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं और कोई दूसरा दुख नहीं है। हम लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए किंतु होता नहीं है। संसारिक लोग या हम लोग अभी साधन के क्षेत्र में, गुरु जी के लिए गुरु जी चले गए तो विरह तो कुछ हुआ नहीं, अभी भी गुरु जी की महिमा वर्णन करके जो हमको संसार समुद्र से पकड़ करके ले आए और हमको इधर में जो दिया, आज जगत की लोग पूजा कर रहे हैं हम लोगों की, उनका ऋण हमें और उनकी करुणा हमको याद नहीं है, स्मरण नहीं, समझ नहीं पाते उनकी। हाँ हो सकता है कि एक दो जन्मों के बाद में साधन करके जिसमें हृदय में स्वरूप शक्ति की वृत्ति आएगी ना, कोई भाव आ रहा है, हो सकता है कि उस समय में हम लोग कुछ समझे। उनके अंदर में तो वो चीजें हैं इसलिए समझ रहे हैं। अभी जो चीज दिया, एक बंदर को एक चिंतामणि दे दो क्या करेगा, वो दांत काटेगा, आपका जूता लेकर के भागेगा, आपके थैली लेकर के चला गया और थैली में सोने का हार है, बैग होता नहीं इसलिए आई लेकर के जा रही थी और उसके बैग को उसने फिट करके और उसमें हीरे जवाहरात के बस ये सब स्वर्ण अलंकार और उसको लेकर के पेड़ पर चढ़ गया और दांत दिखला रहा है। किसने देखा कि हाय हाय क्या करें, कहां लेकर के भाग जाएगा, लोगों से कहा, लोगों ने क्या किया, एक रोटी का टुकड़ा ले आए, एक रोटी या एक फल संतरा या कोई दूसरे का और उसको ऊपर में दिखला करके छोड़ दिया। और बंदर क्या करता है, उस महामूल्यवान थैली को फेंक करके असफल, वो सोचता है कि हमारा प्राप्ति हमको मिल गया, हमारा काम निकल गया, हमारा स्वास्थ्य हो। और उसने क्या किया, उसने छोटी सी चीज देकर के अपना महामूल्य अर्थवान वस्तु को, ऐसे हम लोग ठीक ऐसे ही ये तो कहते हैं बंदर को जरूरत नहीं है, वैसे हम बंदर अभी हैं, हमको अभी संसारिक वस्तुओं की रुपया पैसा प्रतिष्ठा ये सब की अभी जरूरत है, संसारिक भोग की जरूरत है, इसलिए हम लोग बंदर से भी गए थे।
महिमा
जब नाम उदर तक स्वरूप शक्ति की वृत्ति नहीं आएगी, वैष्णव की ऐसी कृपा नहीं होगी, उस चीज को हम लोग समझने के लिए अपारक हैं, नहीं समझ सकते। इसीलिए तो हम लोग बड़े आनंद के साथ में घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों में खूब भेज भेज कर रहे हैं, यहाँ पर भी रात में खूब अच्छी तरह से खाया पिया और बच्चों ने खा उसके लिए। ये महामूल्यवान समय हमारा नष्ट यू ही हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है। न गुरु के प्रति आ सकती है, अंतर पर थोड़ी सी भी आसक्ति, जैसे कि गुरु में रहते आरुणी और ये सब अभिमन्यु अब उपमन्यु इत्यादि का देखा जाता है, वैसा भी तो नहीं देखते, ऐसी भी वृत्ति नहीं जाती। रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसा अपने गुरुओं के प्रति इनों के प्रति अभी हो रहा है, और उन्होंने व्यक्त किया, हम लोगों में ऐसा भी कभी गुरु जी की महिमा किसी से कहते हैं गुरु जी ऐसे हैं अभी दिमाग करते हमको ऐसा कहते हैं। शास्त्रों में से लिखा कि प्रतिदिन अपने गुरु जी की कम से कम थोड़ी सी महिमा का वर्णन, हम लोग स्मरण नहीं करते, सो पत्र उत्तर न जाने क्या क्या चीजें याद आती हैं, कहता भी है तो हृदय में लगता नहीं। एक तितली है ना, उसका पंख पकड़ो तो क्या होगा, कोई उसका पराग बताए वो लग जाएगा, किंतु गुरु जी के चरणों का पराग हम लोग के हृदय में कहीं क्यों नहीं लगता, उनके मन में नहीं समझते गुरु जी ने हमको क्या दिया, ऐसा परमात्मा गुरु जी को देखो। हम लोग अपने गुरु जी का नाम ले सकते घंटों विलाप करते रहते, दिग्धि बन जाते, गदगद हो जाते, अपने नहीं बोल सकते, बोल रहे और उनका गुणानुवाद बस बोल नहीं सके, तो हम अपने नए हम लोग आए हैं, हम लोग रहे इतना आंखें भरी हुई, ऐसा हम लोगों ने कहीं देखा नहीं। तो गुरु के प्रति गुरु आते हैं और उनका शिष्य भी ऐसा, तो ऐसा तो इसलिए इनको यह उपलब्धि हो रही है, क्या चीज दिया के पास में स्वरूप जी गए रात महाप्रभु जी के मैं अष्टधारा जी और कृष्ण कथा हो रही है, कृष्ण श्रीमती गोपियों को छोड़ करके वो चले गए, राधा जी उनके साथ में गई। इसके बाद में कृष्ण चंद्र जी ने राधिका को मनाने के लिए प्रसन्न करने के लिए पुष्प चयन करके दे आए, उनका केश प्रसादन किया, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हैं उसको ठीक किया है, और तरह तरह से उनको प्रसन्न कर, इतने में गोपियां आ गई। वह अलाप इत्यादि रहस्यम विदम हृत्योदयम प्रहसितानम प्रेम वीक्षणम बृहदुरोषीय दीक्षधामते भू अत्मस्नेहा मुह्य। कैसे वहां पर संलाप हुआ होगा, कैसे उनको मना रहे हैं, राधा जी नहीं आ रही और कृष्ण ने उनको जबरदस्ती पकड़ करके उनको मनाने के लिए अलग गोपियों से दूर ले जाना चाहते हैं, और वो छटपट करके हाथ पैर फैला रही खेत रही और कृष्ण उनको पकड़ करके ले गए। एक पुष्प लता जहां पर बड़ी सुंदर बेदी चमेली है और वहीं से पुष्प चयन करके ले आए, देश का संस्कार किया और उनको थोड़ी देर बाद में गोपियां आई। उसने कहा अब तो जल्दी से चलना ही नहीं, कहीं आ जाएंगे देख लेंगे, तो इस समय बस और भी गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं तो चल नहीं सकती, जान ले चलना है आप ले सकते। अत्यंत निकट में जब आ गई तो कृष्ण ने कहा जाते तो चलो, और इतने में जब पैर उठा करके कंधे पर रखना चाहते देखा तो कृष्ण है ही नहीं है, कृष्ण थे पिता कहा था कृष्ण तो थे, किंतु ऐसे उस समय में स्वयं संविद्ध दशा में वो आ गई, जो प्रेम की अंतिम सीमा वहां पर आ गई, अब देख ही नहीं सकते, ये तो अनुराग में ही ऐसा हो जाता, ये क्या कहा है ये सब कुछ नहीं दिखता, तो कृष्ण उनके सामने देख नहीं पड़े और वो की आने लगे कृष्ण वहां से चले गए। अब जब चले गए तब राधिका जी अब अकेले हो गई। उस समय सोच रही है स्मृति मनो में
परिहार
इसका पहले वाला कह रही है आज मेरा मन कृष्ण को स्मरण कर मेरी गलती से ही ऐसा हुआ और उन्होंने हमारे साथ में जो परिहास की थी अब उनका जब आज परिहास कैसा राधा जी को मना रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं उस समय उनको याद आ रहा बस एकदम तन्मय हो गए। अब चाहती हूं उनसे मिलना किंतु और मिलना संभव। अब यही बातें महाप्रभु जी से और स्वरूप दामोदर जी से और रामानंद जी से हो रही है कहां महाप्रभु जी का थोड़ा सा ऐसा भाव देखा विरह का और उन माधुरी राधा जी से विरह का वर्णन वो इस श्लोकों को ले लेकर के और उनकी पुष्टि करने लगे कभी स्वरूप दामोदर कभी राय रामानंद जी अधिक करते उनका गला भी एकदम अस्परा के समान बहुत ही मीठा महाप्रभु जी को उनका उच्च केतन खूब सुंदर लगता था। अब ये सारी रात बातें होते 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 रोते रुलाते सारी रात की बेचारे गोविंद जी द्वारे पर बैठे हुए हैं क्यों भी रो रहे हैं इनको रुला ये जल्दी से चलकर उठ करके चले क्यों नहीं जाते बार बार देखते हैं उनके तरफ में जो वहीं मौका मिले तो इनको कहूंगे आप चले जाइए इनको अभी करू लाइए ये तो अपने आप रोते रोते ये बेहाल हैं और आप लोग इनको और रुलाने हैं दोनों आदमी मिल करके आप तो कहीं भी दया इनके ऊपर में नहीं आती अपने भी रो रहे हैं उनको भी रो रही क्या ये सांत्वना कोई चीज है इनका मन बढ़ा करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जाए और उन्हीं को स्मरण दिया है महाप्रभु जी इनका गला पकड़ करके रोते हैं ये लोग उनको समझाते हैं जैसे ललिता जी समझाते हैं विशाखा जी समझाती हैं। अब ये चीजें स्वरूप दामोदर जी जब सवेरा हो गया महाप्रभु समुद्र स्नान करने के लिए चले गए उनको समुद्र स्नान करवा करके भेज दिया तब ये लोग अपने जब वहां पर स्थान में पहुंचते हैं और अभिनाथ जाती उनके पास नहीं बैठे आज आपने क्या सुना आज क्या महाप्रभु जी का प्रलाप कैसा था और उन प्रलापों को जो चैतन्य चरितामृत में दिया गया है ये प्रलाप कहां का है वही सब प्रलाप रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुन करके उनसे कृष्णदास गोस्वामी को उसका वो कर्ता दिया और अपने मुख से भी बता वो तो रघुनाथ जी का दर्शन किया था राधा कुंड पर जाकर के रहते थे इसलिए समस्त उनका विचार जान करके सब उसने तो इसलिए महाप्रभु के रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्वरूप दामोदर को कभी भूल नहीं सकते वही बातें याद आ आज अगर रघुनाथ दास को वो स्वरूप दामोदर नहीं रहते वो सब जो चीजें हमको उपलब्धि ये देंगे इससे बढ़कर के जगत में और क्या चीज चिंतामणि हो सकती है हे भाव वैष्णवों के लिए महाचिंतामणि है महाचिंतामणि के लिए इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कराएं स्वरूप आप उनसे इस विषय में वार्तालाप करने वाला जो था वो स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी और गदाधर पंडित जी थे ये सब महाप्रभु जी के विरह में अब रह नहीं सके महाप्रभु चले गए ये लोग भी छोड़ करके चले गए उनका हृदय हाहाकार कर उठा अब सोचा गया मुझको अब जीवित नहीं पूरी में नहीं रहूंगा पूरी में न रहने का कारण क्या इसलिए नहीं कि यहां पर कोई कहने सुनने वाला नहीं इसलिए नहीं वहां की जितनी भी चीजें हैं एक एक चीज महाप्रभु और स्वरूप दामोदर राय रामानंद का और गदाधर पंडित का स्मरण अब रहते थे तो सताश्रम आश्रम में यहां पर भी स्वरूप दामोदर रहते हैं अब उनको वही बातें भिक्षु की तरह से उनको जन्म बातें हुई उनसे उत्साह जैसे नंद बाबा थे यशोदा मैया थे गोपियों ब्रज में अब रह नहीं सकती सोचते हैं कि अब घर में रहने से कृष्ण के जो वस्त्र हैं उनकी छोटी बांसुरिया है और कृष्ण के जो खिलौने हैं कृष्ण की जो वस्तुएं हैं कृष्ण का स्मरण दिलाते हैं रोते रोते थक गए कहे चलो अब यहां नहीं रहेंगे यहां पर याद आती है चलो यमुना के घाट पर चले मन बहल जाए कितना हमारा दूसरी तरफ वहां जाते हैं तो देखते हैं कृष्ण के छोटे छोटे चरण थे, इसी पर खेल खेलता था, इसी का दम होते थे, यमुना में स्नान करता था और वही सदा। अच्छा गोवर्धन में चलता, गोवर्धन ने यही देखा, एक ऐसा लता पेड़ पौधा और वहां का कुंज या वहां का गम वो वहां ही नहीं है यहां पर कि उनको जहां जाते हैं कहीं भी आंख बंद करके जाते हैं अब कहीं कोई चीज ही नहीं देखूंगा, मन ही मन में साबित हुआ। उस समय जीवन का रहना कितना भारी दुभर हो जाता है ऐसे भक्तों के लिए, यह दूसरों को समझाना कठिन नहीं है, जिसके हृदय में वो संभावित वही कुछ कुछ समझ सकता है। इसलिए ये वहां से पूरी से चले आए, क्योंकि सब चीजें उनको स्मरण कराती है, जहां जाते हैं वहां मंदिर में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि ये स्तंभ है, स्तंभ पर महाप्रभु जी की अंगुलियों के दाग हैं। गृह में महाप्रभु जब एकदम द्रवित हो जाते तो वो वहां पर दाग हो जाता, वो भी गल जाता, महाप्रभु तो गल ही जाते वो भी गल जाते, और जिस पर खड़े होते थे वो पैर वो पत्थर भी। अब वहां जाती सब वहां जा नहीं सकते, वहीं पर जहां पर महाप्रभु खड़े होते तो वहीं से ये लोग बैठे वहां जाते थे ये हो जाते। इसलिए अब वहां ना सकते, सोचा जैसे अब वृंदावन में जाकर के वहां गोवर्धन से भी उपास करेंगे, भी उपास में होता है ऊपर से गिर करके प्राण छोड़ वहां पर। यहाँ आया तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पास में पहले और मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते, अपने आप व्यक्त हो जाता है, और ये लोग भी तो साधारण नहीं है, ये लोग ऐसा है जो आकाश में यदि कोई चिड़िया ऊपर से जाती है तो नीचे से उसके परों में हल्दी लगा देने वाले, मतलब क्या बहुत बुद्धिमान है रूप सनातन। अब विशेष करके परमात्म राज्य में समझ गए, जैसे इसकी यही भावना हो रही है उनको बतला करके पास में बैठाया, बड़े प्रेम के साथ छोटे भैया की भांति, पुत्र की भांति, शिष्य की भांति, प्राण देने से यदि होता तो मैं पहले ही प्राण दे दे। महाप्रभु जी ने हमको भी कहा था कि प्राण मत देना, प्राण देने से तो कुछ भी
लाभ,
यदि प्राण देने तो मैं लाख बार जन्म ऐसे प्राण दे देता, रथ के नीचे प्राण देने का संकल्प मैंने किया था, किंतु महाप्रभु जी ने कहा यदि प्राण देने से हो जाता है तो प्राण तो मैं अभी 10 बार दे दू, प्राण देने से नहीं, साधन भजन करते बच्चों के संग में उनकी सेवा करने से ये भावों की प्राप्ति है। इसलिए उनको बहुत समझाया, जो समझाया इन्हीं बातों से नहीं, शुद्ध तार्किक और बुद्धियों से नहीं, कृष्ण की कथा जो स्वरूप दामोदर से सुनते थे वही स्वरूप हमारे रूप गोस्वामी जी, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं कभी कुछ ऐसा भाव। जब उज्जवल मणि को लिखा होगा वो उनको दिखाया होगा कि नहीं, उन्होंने ललित माधव की दर्द माधव किया था, यहां आरंभ किया, मुख्यमंत्री यहां किया और मुखबंदी यहां पर किया, रास्ते में जहां जहां याद पड़ी सप्तम में डूबे हुए वहां पर कुछ कुछ लिखते गए, नंदी मुख लिखा, नंदी मुख मैंने क्या
मंगलाचरण,
एक प्रस्तावना होता है, एक मंगलाचरण होता है, एक नंदी मुख होता है, नंदी को इसका सब्जेक्ट क्या है प्रस्तावना के रूप में बताया। जैसे कोई नाटक होगा ना तो पहले आकर के वो इस रूप में कुछ बोलेगा, जैसे कि समस्त कथानक क्या चीज है, आज क्या लीला होगी, उसी के मंगलाचरण में वो सब कुछ दिखा देगा। इसको कहते हैं नंदी अनर्थचरण फिलहाल, ये मंगलाचार्य मंगलाचरण है, और इसके बाद में पुरात में सती नंदन, कौन से सती नंदन, उनके विचारों को समस्त प्रकट करने के लिए जो उन्होंने महाप्रभु जी से सुना था वो सब उज्ज्वल नीलमणि में या विदग्ध माधव ललित माधव ने भरा, उनको दिया ललित माधव महाविरह की पुस्तक है प्रारंभ से, उज्ज्वल नीलमणि में जो उदाहरण कहीं भी नहीं मिले अपने रचित ग्रंथ में से लेकर के उदाहरण दिया, कहीं है ही नहीं है उसका उदाहरण, इसे सब रघुनाथ दास गोस्वामी पढ़ते 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 एकदम वो सब चीजें भूल गए और नया उनके हृदय में एक भाव होता कि विरह भाव आया क्या राधा और कृष्ण के विरह अब ये आ गए अपना जो विरह भाव प्रभु और दामोदर के प्रति थे वो भूल गए। इस तरह से उनके मन को घर में लगाए जब देखा जिसे रोते रोते उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो देखा जिसे ये तो सब में विरह में सतर्क करता हूं मरने जाए दान के लिए कमोदी की दान दयाल के लिए चिंता में दान के लिए कमोदी वही छोटी सी पुस्तक परिहास्य रस थी उन्होंने सात आठ में लिख करते और रघुनाथ दास भाई वो पुस्तक जरा संस्था कोई संशोधन करना है दे दो तब तक इसके लिए पढ़ो तो पढ़ करके उस पुस्तक को भूल गए अब इसी में मत हो गए और कभी से कभी वैसे करते अब वो एकदम भूल गए। इस तरह से रघुनाथ उनके स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के बाद में गदाधर के बाद में महाप्रभु जी के बाद में अब किसी प्रकार से जीवन धारण करके यहां रहेंगे किंतु वो भी जब चले गए तब अब कोई सहारा नहीं ग्रह में दिन रात विराज उसी समय में ये कहते हैं बहु महाराज जैसा दुर्बुद्धि और गीतांत के गाने सुनना आम के रहते हुए मैंने उनकी मर्यादा और उनका कुछ भी नहीं समझा उनसे मैंने कुछ भी नहीं सीखा आज वो चले गए। अब गुरु जी जब तक थे हम लोग उनसे सदन रूप में सभी बातें सब तरह के प्रश्न कूट प्रश्न जो कुछ भी होता था सब उनके सामने आज हम लोगों का ऐसा दुर्भाग्य तुम लोगों का सौभाग्य है हम लोगों से बाम पूज्यपाद बाबू महाराज जी से और लोगों से पूछ लेते किंतु हम लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है ना ये किसी से हम लोग कुछ सब कुछ नहीं करते ऐसा बतलाने वाला ही कोई नहीं रह गया इसलिए हम लोगों का दुर्भाग्य हम अपने अधिकार में बस वहीं पर स्टेटमेंट हो गए वहीं पर स्थिर हो गए इसलिए हम लोग दुर्भाग्य हैं आप लोग बड़े सौभाग्यवान आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं कुछ कुछ हम अपने अधिकार के अनुसार में बतला भी सकते हैं और भी बतलाने वाले हैं इस तरह से ये अपने को दुर्भाग्यता ज्ञान सुनना और इसलिए कहता है कि मैं उनके जाने के बाद भी मैं विरह में मर ही दिया अभी तक भी जैसे महाप्रभु जी ने कहा था न प्रेम गंधो की दरा अपनी हरऊ क्रंद्याम सौभाग्य भरम प्रकाश बंसी विलास्या आनंद अवलोकन विभक्त जब प्रांत प्रसन्न कर मछली एक साधारण पानी के लिए मर जाती है अक्षर पदार्थ और हम उस प्रेम के लिए पानी के लिए कृष्ण को पाने के लिए श्रीमती राधिका जी के चरण पान के लिए अभी तक मर नहीं गए हम लोगों को कोई विरह की वेदना नहीं करता इसलिए ये सब कार्य कितना बच गया आज रहने तो बहुत अधिक समय हो गया अब इसकी जो बातें व्याख्या रह गई है बोलो
जय जय श्री राधा।